आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभवी है और आज हम सब द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 आपकी इंग्लिश की बुक से। हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले, आपको चैप्टर पढ़ा ही होगा आपने, मैं आपको बताऊं कि चैप्टर कंप्यूटर के बारे में है। एक स्कूल होता है, वहाँ पे साइंस टीचर और प्रिंसिपल एक साइंस क्लब खुलवाते हैं और उस साइंस क्लब का सेक्रेटरी होता है श्याम 10th क्लास से, और वो डॉक्टर आशुतोष जो अभी अभी अमेरिका से कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए हैं उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि वो बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताना चाहते हैं और उन्हें लगता है डॉक्टर आशुतोष से अच्छा और कोई नहीं। तो जब डॉक्टर आशुतोष आते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्लास के उनसे कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं, जैसे कंप्यूटर किसने इन्वेंट करा, कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर ह्यूमन से अच्छा या नहीं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है और बहुत सारे और क्वेश्चंस। तो चलिए, ये चैप्टर की हमने एक छोटी सी समरी देखी, अब हम एक्टिविटीज पर आते हैं। एक्टिविटी 1, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें सही विकल्प को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, Ask Mohan to get in touch with Dr. Ashutosh and request him to inaugurate the club on Saturday if convenient. Hear the phrase get in touch with means. तो मोहन से साइंस टीचर कहते हैं कि डॉक्टर आशुतोष से जल्दी आप बात करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो सैटरडे आके उनका उनके क्लब में आए और कंप्यूटर के बारे में बताए। तो यहाँ जो फ्रेज है Get in touch with का क्या मतलब है? तो यहाँ options है, A, to communicate with somebody, especially by writing or telephoning them. B, to try to touch somebody if possible. C, to know what is happening in a particular area or subject. Or D, none of the above. तो पहला है इसका सही जवाब, to communicate with somebody, especially by writing or phoning them. किसी से जल्दी बात करना, specially राइटिंग के थ्रू, लिखने के थ्रू या फोन के थ्रू, ठीक है। दूसरा नहीं है, टच करने लिटरल मीनिंग नहीं है, एकदम जैसे कि किसी को टच करना है, छूना नहीं है, बल्कि बात करना है। ऑप्शन है ए। सेकेंड, इट लुक्स लाइक अ कैबिनेट, हियर द वर्ड, इट स्टैंड्स फॉर ए ट्रांजिस्टर, बी टेलीविजन, सी कंप्यूटर और डी साइंस क्लब। सही जवाब है सी कंप्यूटर। डॉक्टर आशुतोष से जब बच्चे पूछते हैं कंप्यूटर कैसा दिखता है तो बच्चों को वो जवाब देते हैं इट लुक्स लाइक अ कैबिनेट, कि वो कैबिनेट की तरह दिखता है, एक डब्बे की तरह दिखता है। तो सही जवाब है सी कंप्यूटर। थ्री, कंप्यूटर्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग बिकॉज ए दे आर मेमोरी मशीन्स, बी दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, सी दे आर गिवन अ प्रोग्राम बाय अ टेक्नीशियंस और डी ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। सही जवाब है डी, ह्यूमन ब्रेन्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा हिला है, समझ रहे हो। जैसे कंप्यूटर को सिर्फ दो भाषा समझ में आती है, सही या गलत, पर हमारा दिमाग कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये 100% सही है। तो ये जो सही गलत का ह्यूमंस में थोड़ा कम होता है कि हम कभी कभी गलत चीजें सही समझ लेते हैं, सही चीजें गलत समझ लेते हैं, पर जो कंप्यूटर होता है, जो मशीन होती है, उसको सिर्फ यस और नो ही समझ में आता है। तो सही जवाब है डी, ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। बी पर आते हैं, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताए गए जो स्टेटमेंट्स हैं हमें बताना है क्या वो सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, एनीवन कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। नहीं, कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकता, एक ऐसा इंसान जिसको कंप्यूटर सही से चलाना आता है वो ही सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। बी, कंप्यूटर आर मोर कॉम्प्लेक्स देन आर ब्रेन, कंप्यूटर हमारे दिमाग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैंने बिल्कुल अभी कहा नहीं, हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कंप्यूटर सिंपल है, कंप्यूटर को सिर्फ दो भाषा समझ में आती है, सही या गलत, यस और नो। तो इसका जवाब है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। थ्री, कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल टू द पीपल इन बिजनेस इंडस्ट्री। कंप्यूटर्स बहुत यूजफुल है, बहुत काम आते हैं उनके जो बिजनेस में है या इंडस्ट्री में है, जो किसी उद्योग में है या किसी व्यवसाय में है, उनके बहुत काम आता है कंप्यूटर। बिल्कुल ट्रू, हाँ बिल्कुल, बहुत यूज आता है, इसका जवाब है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, द साइंटिफिक पेपर्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड बाय कंप्यूटर्स. जो साइंटिफिक पेपर्स होते हैं, जो हम जो साइंस के पेपर्स होते हैं, वो कंप्यूटर में ट्रांसलेट नहीं हो सकते. इसका जवाब है फॉल्स, क्योंकि हो सकते हैं. कंप्यूटर में हर चीज हो सकती है, वो भी जल्दी. जैसा कि डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, देखो यहाँ पे चैप्टर में भी लिखा है कि यहाँ पे 5000 टाइम्स ज्यादा तेज चलता है कंप्यूटर का दिमाग. तो इसका जवाब है फॉल्स. फिफ्थ, देयर आर 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. फॉल्स, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. सिर्फ 2 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है. कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एंड एनालॉग. फॉल्स है इसका जवाब. क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर हैज 10 बिलियन पार्ट. कंप्यूटर के करीब 10 अरब हिस्से हैं. नहीं, कंप्यूटर ऐसा नहीं है. एंड में डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि ह्यूमंस के बल्कि 10,000 सेल होते हैं, ठीक है. कंप्यूटर के तो कुछ 100,000 पार्ट्स होते हैं, ये एंड में डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, बिल्कुल एंड में. तो इसका जवाब है फॉल्स. श्याम इज द सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब. श्याम साइंस क्लब के सेक्रेटरी होते हैं. तो ट्रू, बिल्कुल छात्र के स्टार्टिंग में होता है ये, कि जो टीचर है वो प्रिंसिपल को बताता है कि श्याम सिलेक्ट हुए हैं सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए. तो इसका जवाब है ट्रू. क्वेश्चन नंबर 8, मोहन इज एन इंटेलिजेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट. चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मोहन एक सिंसियर या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बल्कि ये स्टेटमेंट श्याम के लिए लिखी गई है कि श्याम एक सिंसियर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. मोहन के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है कि वो कैसा है, तो हम इसको फॉल्स मान के चलेंगे. चलिए सी पर आते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10-20 वर्ड्स. छोटे आंसर्स लिखने हैं, एक एक सेंटेंस के आंसर लिखने हैं बस. तो पहला है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर. हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को पहली बार किसने बनाया. तो इसका सही जवाब है यहाँ पे पेज नंबर 76 में, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर आशुतोष ने कि द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय हरमन होलेरिथ इन 1946. ये वाली लाइन है इसका आंसर. द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय हरमन होलेरिथ इन 1946, ठीक है, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड. तो जो पहले का आंसर है वही सेकंड का आंसर भी हो जाएगा. इट वॉज इन्वेंटेड इन 1946, ठीक है. नहीं तो जो हमने पहले आंसर लिखा वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नेम वॉज गिवन टू द फर्स्ट कंप्यूटर. तो डॉक्टर आशुतोष जब बताते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय हरमन होलेरिथ इन 1946, तभी आप देखो कि आगे लिखा है हिज मशीन वॉज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक टेब्यूलेटिंग सिस्टम. तो पहले कंप्यूटर को क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉनिक टेब्यूलेटिंग सिस्टम. तो क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक टेब्यूलेटिंग सिस्टम इज द नेम वॉज गिवन टू द फर्स्ट कंप्यूटर, या द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक टेब्यूलेटिंग सिस्टम. फोर्थ, व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के वो 5 पार्ट कौन से होते हैं. तो यहाँ पे जब आशुतोष से पूछते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, तब आशुतोष बताते हैं पेज नंबर 77 में. देखो डॉक्टर आशुतोष में बिल्कुल पेज के बीच में लिखा है, बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स हैव 5 पार्ट्स. तो आंसर क्या हो जाएगा? द 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर इनपुट, कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है. द 5 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर इनपुट, कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो पेज नंबर 77 में डॉक्टर आशुतोष का सेकंड डायलॉग जो है वो इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4th, हु कैन मल्टीप्लाई फास्टर, अ कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स. क्वेश्चन नंबर 5th है कि मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना होता है कि डबल करना, ठीक है. डबल करना कोई चीज, ट्रिपल करना कोई चीज, मल्टीप्लाई करना, गुना करना, तो क्या कौन ज्यादा कर सकता है, कंप्यूटर तेज कर सकता है या ह्यूमन बींग्स? ऑब्वियसली कंप्यूटर ज्यादा तेज कर सकते हैं, तो सही जवाब है कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स कैन मल्टीप्लाई फास्टर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन अ कंप्यूटर वर्क लाइक अ मशीन? कंप्यूटर मशीन की तरह कैसे काम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल उसी पे, पेज नंबर 77 में देखो लिखा है डॉक्टर आशुतोष ने तीसरे डायलॉग पे कि बिल्कुल मशीन की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, ये वाला जो डायलॉग है, इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम, इट कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद लाइटनिंग स्पीड एंड परफेक्ट एक्यूरेसी, इट कैन मल्टीप्लाई 2-10 डिजिट नंबर्स इन 1/1000 seconds, a problem that would take an average man 5 minutes to do with pencil or paper. Some computers can work 5000 times faster than men. ठीक है, तो ये जो आंसर है इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि they are faster than men, they are better than machines, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नहीं तो आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो आउटपुट देना होता है, ठीक है, और वो ज्यादा सोचता नहीं है, समझ रहे हो? मैंने जैसा कि बताया कंप्यूटर हाउ कैन अ कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन सही और गलत का ही मतलब समझती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट यस और नो, hence it only gives output. ठीक है, सिंपल। ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन, या फिर नहीं तो ये लिख सकते हो कंप्यूटर इज अ मशीन बिकॉज इट डजंट थिंक लाइक ह्यूमंस बिकॉज दे आर सिंपल। ठीक है, आप चैप्टर में इसका आंसर कहीं भी नहीं है, नहीं तो जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाया वो पैराग्राफ रिफर करके आप अपना आंसर बना सकते हो कि कैसे वो तेज मल्टीप्लाई करते हैं, दे कैन वर्क फास्टर देन ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द प्रिंसिपल थैंक डॉक्टर आशुतोष? एंड में डॉक्टर आशुतोष को थैंक यू क्यों करते हैं प्रिंसिपल? तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज डॉक्टर आशुतोष गेव many interesting information to the students, because Dr. Ashutosh gave many interesting information of computers to the students. ठीक है, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो कंप्यूटर के बारे में, इसलिए प्रिंसिपल उन्हें थैंक यू बोलते हैं। पेज नंबर 78 में लास्ट में प्रिंसिपल ने थैंक यू जो लिखा है, thank you very much Dr. Ashutosh for coming here and giving us all these interesting information, ye aap likh sakte ho apne answer mein ki because Dr. Ashutosh gave many interesting information about the computers. theek hai, aise karke aap answer likh sakte ho. activity 1 mein hi d, answer the following questions in 30 to 40 words. what is the difference between a digital and an analog computer? तो digital और analog computer में मतलब बताना है, तो page number 77 में सबसे पहले देखो लिखा है डॉक्टर आशुतोष, ठीक है, तो वो बता रहे हैं the main types of computers are digital and analog. the digital computer works like an electric light, it is either on and off. an analog computer works like a thermometer, it does not jump from one number to the next, it slides along. तो ये जो लाइन है, a digital computer works like an electronic light वाली पूरी जो लाइन है ये basically answer है, ठीक है? the digital computer works like an electronic light, it is a either on or off, ठीक है? either it is either on or off. तो जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिक लाइट की तरह है, या तो वो जल रहा है या वो नहीं जल रहा है. एन एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स लाइक अ थर्मामीटर, ठीक है, इट डज नॉट जंप फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, इट स्लाइड्स अलोंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चल बिल्कुल ही बंद हो गया या चल रहा है, वो हिलता रहता है, ठीक है, वो थर्मामीटर की तरह है जो हिलता रहता है. आपने थर्मामीटर देखे होंगे, अब नहीं होते पर पहले टीवी के साथ हम थर्मामीटर्स लगाते थे, तो जब भी लाइट आती थी वो एकदम से ऊपर हो जाता था और हिलता रहता था, वो वोल्टेज कैरी करता रहता था थर्मामीटर। तो ये जो डिफरेंस है पेज नंबर 77 में, यही इसका आंसर है। सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोग्राम? प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्राम होते हैं बेसिकली इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोग्राम कैन बी मीन एज इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन, ठीक है। द यूजर गिव्स प्रोग्राम टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू गेट व्हाट, रिजल्ट्स और आउटपुट, राइट। तो आप लिख सकते हो द प्रोग्राम्स आर आइदर इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट्स और रिजल्ट्स। चैप्टर में कहीं भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, बट पेज नंबर 77 में ये आंसर देखो, एक डॉक्टर आशुतोष ने कहा है, अ प्रोग्राम इज ए गिवन, अ कंप्यूटर इज गिवन ए प्रोग्राम, देखो है ना, लिखा है ना, दैट इज इंफॉर्मेशन और द वर्क आउट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन टू इट बाय अ टेक्नीशियन ट्रेन्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मैंने जो आंसर बताया वो सिंपल आंसर है, तो मैं चाहूंगी कि आप वही आंसर को कैरी करें, वही आंसर समझें। ये आंसर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। अगर आपको लिखना है तो आप ये चीज पे लिख सकते हो, अ प्रोग्राम इज ए इंफॉर्मेशन और द वर्क आउट सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू इट बाय अ टेक्नीशियन ट्रेन्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं। एक्टिविटी टू, गिव वन वर्ड फॉर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक वर्ड देना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। तो जैसे कि कंप्यूटर कैन डू सम्स विद परफेक्ट एसी, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि कंप्यूटर एकदम जल्दी से काम कर लेता है, एकदम परफेक्ट सम देता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्यूरेसी, एसी है ना, तो एक्यूरेसी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कंप्यूटर कैन डू सम्स विद परफेक्ट एक्यूरेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, रंजीत फादर वर्क्स इन ए वॉच फैक्ट्री, ही इज ए डैश टेक, ए हाईली स्किल्ड मैकेनिक, ठीक है। ए हाईली स्किल्ड मैकेनिक क्या होता है, टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन है इसका आंसर, ठीक है, टेक्नीशियन। क्वेश्चन नंबर थ्री, पीटी अशोक अमिता इज एन एस्ट्रोलॉजर, ही प्रिपेयर्ड माय होरो, द चार्ट ऑफ अ पर्सन प्लैनेटरी पोजीशंस यूज्ड फॉर टेलिंग फ्यूचर। आपने राशियां बनवाई होंगी, राशियां होता है ना, राशि होती है, राशियां मैच करते हैं हम, जन्म पत्री, तो जन्म पत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपकी राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप, ठीक है, हॉरोस्कोप, एच ओ आर ओ एस सी ओ पी ई, हॉरोस्कोप, ठीक है, इंग्लिश में राशि वगैरह को क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप। बी, राइट द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। डॉक्टर आशुतोष हैज डैश कम फ्रॉम अमेरिका, तो सही जवाब है, रीसेंट हमें यहाँ पे साइड में दिया है, तो हमें सही से लिखना है। रीसेंट को क्या होगा, रीसेंट क्या होता है, रीसेंट एक वर्ब होता है, ठीक है, रीसेंट क्या होता है, रीसेंट वर्ब नहीं होता है, सॉरी, रीसेंट होता है एक एडजेक्टिव, तो हमें एडवर्ब यूज करना है, तो रीसेंट का क्या हो जाएगा, रीसेंटली, ठीक है, रीसेंटली। डॉक्टर आशुतोष हैज रीसेंटली कम फ्रॉम अमेरिका। मिस्टर गिरधारी हैज अंडरगॉन ए डैश ट्रेन, तो मिस्टर गिरधारी अभी अभी क्या करने गए हैं, ट्रेन करने गए हैं, तो ट्रेन क्या होता है, ट्रेन वर्ब होता है, ठीक है, ट्रेन होता है एक वर्ब, और ट्रेनिंग होगा इसकी जगह क्या होगा, नाउन लगाएंगे हम, तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग। मिस्टर गिरधारी हैज अंडर गॉन ए ट्रेनिंग. थर्ड, हु डिड यू गेट दिस डैश फ्रॉम, आपको ये कहां से मिला, क्या मिला, क्या मिल रहा है इसे, इसे मिली है एक इनफॉर्म. इनफॉर्म भी क्या होता है, इनफॉर्म एक वर्ब होता है राइट. और हमें क्या लगाना है, हमें नाउन लगाना है, तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इन्फॉर्म करना होता है मतलब किसी को कुछ बताना, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बात जो बतानी है, समझ आई. तो क्या होगा, यहाँ पे बताना लिखा है तो हमें तो बात बतानी है, बात बतानी है. ठीक है, बात क्या है, बात है, बात को क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन. तो हु डिड यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ही बॉट ए डैश यस्टरडे, ये कल कुछ लेकर आया था. डैश क्या लेके आया था, कैलकुलेट. कैलकुलेट क्या होता है, कैलकुलेट भी क्या होता है, कैलकुलेट होता है एक वर्ब. ठीक है, कैलकुलेट होता है एक वर्ब. और कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर होता है एक नाउन. ठीक है, तो अब दोबारा वर्ब से नाउन में जाना है हमें. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही बॉट ए कैलकुलेटर यस्टरडे. लास्ट है, विल द क्लाइमेट ऑफ कोल्ड कंट्री डैश यू सूटेबल, कोल्ड कंट्री का जो क्लाइमेट है क्या आपको सूटेबल है. सूटेबल क्या होता है, सूटेबल एक एडजेक्टिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूट मतलब सूट आएगा, क्या आपको ठंडा जो वेदर है सूट करता है. तो क्या करा मैंने, मैंने वर्ब में सूट को यूज करा. सूटेबल क्या हो जाता है, सूटेबल एक एडजेक्टिव होता है, एक ठीक है एडजेक्टिव होता है, मतलब किसी का नाउन के साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं. बट हमें नाउन या एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, हमें एक क्रिया चाहिए इस वक्त. तो क्या हो जाएगा, विल द क्लाइमेट ऑफ कोल्ड कंट्री सूट यू. ठीक है, सूट यू. ओके, क्वेश्चन नंबर सी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. तो पहला वर्ड है मॉडल, मॉडल दोबारा से सेम वर्ड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बस ई और ए का मतलब है. तो मॉडल, ई वाले मतलब क्या होता है, ई वाले का मतलब क्या होता है, मॉडल, एम ओ डी ई एल, मतलब होता है कोई प्रोडक्ट, कोई चीज, मॉडल. ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग चीज, ये याद रखना, कोई नॉन लिविंग थिंग चीज. ठीक है, या फिर जैसे मॉडल मतलब कोई आपका रोल मॉडल है, सपोज कोई ऐसी चीज जिसको आप लुकअप करते हो, कोई ऐसी चीज जिसको आप देखते हो, मॉडल. ठीक है, कोई बेसिक शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक चीज, एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक थिंग, इसको हम मॉडल कहते हैं. ठीक है, या फिर जो कैमरास के आगे पोज करते हैं लोग, वो भी मॉडल होते हैं. तो मॉडल्स यूजुअली कोई चीज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट. कि अगर कोई कपड़े की मॉडल है तो वो कपड़ा पहन के दिखाएगी, समझ रहे हो, वो एक चीज है, वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज हो रही है, उसका कोई वजूद नहीं है इस वक्त. एक मॉडल का क्या वजूद है, अगर वो कपड़ा पहन के दिखा रही है, उसका ये वजूद है कि वो कपड़ा दिखा रही है, वो कोई पर्सनलाइज नहीं कर रही है, कोई आपसे बात नहीं कर रही है, वो कपड़े दिखा रही है. तो मॉडल क्या होता है, कोई चीज, बेसिक हिंदी में मतलब है कोई चीज. और एम ओ डी ए एल, मॉडल का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है एवरेज, नॉर्मल, मतलब सिंपल. ठीक है, मॉडल है. नहीं तो होता है, कभी कभी हम मॉडल को यूज कर लेते हैं म्यूजिक में. ठीक है, म्यूजिक में भी हम मॉडल का एक, कभी कभी हम यूज करते हैं मॉडल को म्यूजिक में. ठीक है, मोड, ठीक है, मोड, मोड में म्यूजिक का एक टर्म होता है मोड, उसको हम यूज करते हैं. इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये याद रखिएगा, मॉडल मतलब होता है नॉर्मल. ठीक है, एवरेज, मोड, मोड. मैथ्स में आपने मीन मोड पढ़ा होगा अगर, तो मोड. ठीक है, मोड सिंपल चीज है. या फिर एक और मीनिंग होता है एम ओ डी ए एल वाले का, मॉडल का, वो होता है म्यूजिक से रिलेटेड, मैंने अभी आपको बताया, या आपके मूड से रिलेटेड. ठीक है, कोई मूड बताना कि मेरा जो मूड है वो अच्छा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो सपोज मॉडल को हम कभी कभी यूज करते हैं मूड के लिए भी. ठीक है, मूड, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका मूड ठीक नहीं है, मूड में नहीं है ये अपने. ठीक है, तो मॉडल को मूड के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं. ठीक है, सेकेंड इज सी और सकती। तो पहले वाले सी का मतलब होता है देखना, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है। और दूसरे वाले सी का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। आई वेंट टू सी अ सी, ठीक है, मैं सी को देखने गया, मैं समुद्र को देखने गया, सी, ठीक है, समुद्र। थर्ड इज आर और आर, ठीक है, एक है आर, ओ यू आर, और मतलब होता है हमारा, आर, आर कंट्री, हमारी कंट्री। और एच ओ यू आर का मतलब होता है घंटा, आर घंटा मतलब समय, पूरा 60 मिनट्स को घंटे बोलते हैं ना हिंदी में, घंटा हो गया, चलो तुम्हारा घंटा कंप्लीट हो गया, आर हो गया तुम्हारा। तो इसमें आप एक चीज याद रखना, एच साइलेंट होता है, ठीक है, आर प्रोनाउंस होता है, हावर प्रोनाउंस नहीं होता है, आर प्रोनाउंस होता है, इसको इसको आर करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ लोग आवर आवर करते हैं, आर, इट्स आर, ठीक है, आर, हावर नहीं, आर। फेयर एंड फेयर, ठीक है, एफ ए आई आर, इस वाले फेयर का क्या मतलब होता है, इस वाले फेयर का मतलब होता है मतलब ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक है, फेयर है, ठीक है, जस्ट है, बिल्कुल फेयर है, सही है। और एफ ए आर ई का मतलब होता है किराया, ठीक है, फेयर, किराया, ठीक है, किराया, सिंपल, किराया दे दो, फेयर दे दो मेरा, ठीक है। हाँ, एक और चीज आप याद रख सकते हो, एफ ए आई आर, इस वाले फेयर को हम एक और चीज भी कहते हैं, मेला, ठीक है, मेला, मेले को भी हम क्या कहते हैं, फेयर, एफ ए आई आर, इसको भी क्या कहते हैं, फेयर। तो फेयर, एफ ए आई आर के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है ठीक ठाक, एक मीनिंग होता है अपना मेला, ठीक है, मेला। और एफ ए आर ई का एक ही मीनिंग है, इसका मीनिंग है किराया। फिर है शोन, शोन, पहले वाले शोन का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, दिखाना, शी शोन हर डॉग्स, उसने मुझे अपने कुत्तों से मिलवाया, दिखाया, शोन, ठीक है। फिर दूसरे वाले वर्ड का मतलब है शोन, एस एच ओ एन ई, इसका मतलब है कोई चीज जो चमकती है, शाइन, शाइन का पास्ट टेंस होता है शोन, ठीक है, साइन, शाइन वर्ड आपको समझ आता है ना, शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो इसका थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, शोन। सिमिलरली शो, शो मतलब होता है दिखाना, और शो का थर्ड वर्ब इज शॉन, ठीक है। तो दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, डिफरेंस है, एक का मतलब है दिखाना, एक का मतलब है चमकना। फिर है सेल और सेल, एस ई एल एल, इसका मतलब होता है बेचना, कोई चीज बेचना, ठीक है। और दूसरे वाले सेल, सेल का मतलब होता है कोई कमरा, जेल, जेल समझते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। नहीं तो सेल का मतलब होता है बॉडी में सेल जो होते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जैसे मेरी स्किन किससे बनी है, टिश्यूज से, टिश्यूज का सबसे स्मॉल पार्ट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, सेल, सी ई एल एल, इसका मतलब है सेल। सेल के भी दो मतलब है, सी ई एल एल का, एक का मतलब है जेल और एक का मतलब है हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा, सेल। नाउ एक्टिविटी थ्री, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम योर टेक्स्ट। फर्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। सेकेंड, हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड बाय। थर्ड, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय हरमन होलोविथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम अब अगली ऑडियो में करेंगे, तो ये हम अब अगली ऑडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।